विद्यारण्य स्वामी विरचित एवं स्वामी भारती तीर्थ महाराज द्वारा पूरित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण को आप लोग श्रवण कर रहे हैं और जो क्रम चल रहा था पूर्व में वहां तक पहुंचने में कुछ सीढ़ी हम लोग पीछे हैं। कल तक हम लोगों ने कहां आठवें श्लोक तक किया था ना, हाँ संक्षिप्त में देखते हुए चल रहे हैं। आप लोगों के लिए नहीं, मैं मेरे लिए देख रहा हूं क्योंकि मेरा भी आपके सद्यतन के साथ में चिंतन हो जाए तो आपका दौरान हो रहा है और मेरा भी चिंतन हो रहा है तो दोनों को बहुत लाभ है, संबंध जोड़ने में बड़ी सुविधा रहेगी। बैठ जाओ मां आराम से। संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम चल रहा था। संवादी भ्रम तीन प्रकार से बता रहे थे दोनों ही। तो पहला हुआ प्रत्यक्ष जो संवादी भ्रम है उसका वर्णन आया, दीप प्रभा और मणि प्रभा को लेकर के उसका विचार आया। दूसरा आया है अनुमान से, जो प्रमाण अनुमान प्रमाण उससे होने वाला भ्रम, वाष्प जल का उदाहरण देकर के वो चीज आपके सामने आई। तीसरा आगम जो भ्रम होता है संवादी भ्रम, उसका उदाहरण आया था गंगा जल और तो गोदावरी जल का लेकर के। गोदावरी जल में गंगा जल का जो भ्रम हुआ वो संवादी भ्रम हुआ था, उसका उदाहरण भी आप लोगों ने देखा। इसी प्रकार से एक शास्त्रीय संवादी भ्रम और आया है नौवें श्लोक में, आप देखिए, ज्वरेण आप्त सन्निपातम भ्रांत्या नारायणम स्मरन मृतः स्वर्गम वापनोति स संवादी भ्रमो मत। ये भी संवादी भ्रम ही माना जाता है। क्या है वो? बोले ज्वरेण आप्तम सन्निपातम भ्रांत्या नारायणम स्मरन मृतः स्वर्गम आपनोति। ये पौराणिक समझ लो, शास्त्र में भी जो पौराणिक भ्रांति है संवादी भ्रम उसको यहां पर लिया है। कोई व्यक्ति कहते हैं कि ज्वरेण आप्तम सन्निपातम, ज्वर के द्वारा सन्निपात को प्राप्त हुआ। सन्निपात जो होता है ना, जब वात पित्त और कफ तीनों के तीनों कुपित हो जाएं, विपरीत हो जाए तो शरीर की स्थिति बिगड़ती है। सन्निपात उसी, सन्निपात जो ज्वर होता उसी को बोलते हैं। क्यों? जब वात की कुपितता होगी तो खांसी है आदि शरीर में बढ़ने लगेंगे, कहीं गुर्दों में जो वो गांठियावादी बोलते हैं उसका कुपित होना वही होता है, शरीर के जोड़ जकड़ जाएंगे आदि आदि क्रियाएं जो होती है उसका कुपित होना होता है। और साथ में उसी समय फिर वात के साथ में पित्त भी बढ़ जाए तो पित्त क्या करता है, हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को हजम करने का काम करेगा। पर पित्त बढ़ने के बाद शरीर में देखो खट्टी खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाएगी, वो पित्त का ही तो दोष है। तो पित्त बढ़ने पर खट्टी डकारें आने लगेगी, इस तरह से जो उसका वो भी कुपित हो जाता है और वात पित्त और कफ बढ़ जाता है। तो कफ क्या काम करेगा, हमारे शरीर में जो रस की मात्रा है जल की मात्रा है उसको बढ़ा देगा। तो जल की मात्रा बढ़ने पर फिर जुकाम आदि होने लगते हैं। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों वात पित्त और कफ जब कुपित हो जाते हैं, अपने सीमा से बाहर चले जाते हैं, अधिक मात्रा में होने लगते हैं तो क्या होगा, शरीर में ज्वर तो आना ही है, उसको बोलते सन्निपात ज्वर। तो ऐसा सन्निपात ज्वर आ गया तो समझ लो कि अब जाने की तैयारी हो रही है, प्रयाण की स्थिति आ जाती है। तो जाने की तैयारी होने पर उस समय कोई व्यक्ति यदि मृत्यु को देख करके डर जाए कि अब तो जा रहा हूं, और वो नारायणम स्मरम भ्रांत्या नारायणम स्मरण, नारायण को स्मरण करता है, पर कौन से नारायण को, उसके बेटे का नाम नारायण है, बेटे का नाम नारायण है, तो नारायण शब्द को स्मरण करता, ध्यान देना, बेटे की बजाय वो नारायण शब्द को स्मरण करता है, और जिस नारायण शब्द का अर्थ वहां पर पुत्र है वो स्मरण किसको कर रहा, नारायण शब्द को, और उस शब्द का अर्थ क्या होगा, उसका पुत्र, पर नारायण को स्मरण किया जिसका अर्थ वहां पर पुत्र है, लेकिन पुत्र की बजाय वहां पर परमात्मा के भगवान के पार्षद उपस्थित हुए, वो नारायण की प्राप्ति होती है, मृत स्वर्गम अवाप्नोति, नारायण को स्मरण करता हुआ मरा हुआ पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो क्या स्वर्ग की प्राप्ति से के लिए उसने नारायण को स्मरण किया, तो इसका अर्थ हुआ कि जो नारायण शब्द है वो शब्द तो नारायण नहीं है, परमात्मा नहीं है, लेकिन उस नारायण शब्द से ही परमात्मा की उसको प्राप्ति हो जाती है, अथवा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर जो नारायण शब्द है, ये नारायण शब्द तो साक्षात परमात्मा नहीं हो सकता, ये तो पुत्र के अर्थ में भी जा रहा है, लेकिन भ्रम से भी यदि किसी ने नारायण शब्द का उच्चारण किया है तो वह स्वर्ग अधिकारी बन जाता है। यहां पर यह भी भ्रम ही है, क्योंकि परमात्मा नारायण तो अशब्दम अस्पर्शम अरूपम कहा भाई, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, और नारायण शब्द से स्मरण किया गया है, तो नारायण शब्द की ही विशेषता है कि मरने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए यहां पर संवादी भ्रम है, ज्वरेण सन्निपातम प्राप्त पुरुष इदम नारायण स्मरणम मम स्वर्ग साधनम इति ज्ञानम अंतरेणापि, उसको यह पता नहीं था कि इस नारायण का स्मरण करने से ही मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये भावना नहीं थी उसकी, वो तो बेचारा डर करके मजबूरी में पुत्र के बहाने नारायण स्मरण शब्द को स्मरण किया था। तो इदम नारायणम स्मरणम मम स्वर्ग साधनम, ये नारायण स्मरण जो है शब्द का, ये मेरे स्वर्ग का साधन है। इस प्रकार से ज्ञानम अंतरेणापि, उसको ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान के बिना होते हुए भी सन्निपात प्रयुक्त ब्रह्मवशात साधारण पुरुषतया चेद आदिवन नारायणम स्मरण, क्योंकि सन्निपात प्रयुक्त ब्रह्मवशात, उसको तो सन्निपात बुखार के कारण है, उसने नारायण शब्द को स्मरण किया है, ब्रह्म से किया है, लेकिन साधारणतया पुरुषतया चेत आदिवन नारायणम स्मरण, यदि ऐसे कर लेता है तो उसको नारायण को स्मरण करते हुए मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति ही होती है। हरीर हरिति पापाने दुष्ट चित्तै अपि स्मृतः आक्रुष्य पुत्रम भगवान यदजा मिलोपि नारायण आयति म्रियमाण इयाय मुक्तिम इत्यादि पुराण वचनेभ्य। ये देखो पुराण स्मृति या भ्रम है, तो शास्त्र में भी वैदिक और वैदिक में फिर यहां पौराणिक जो भ्रम बताया गया उसको यहां पर कह रहे हैं। हरिति हरति पापानी, उसको हरि शब्द जो होता है वो क्या करता है, पापानी हरति, दुष्ट चित्तैरपि स्मृत, कहते हैं केवल शब्द में भी वो शक्ति होती है। कोई दुष्ट चित्त पुरुष हो और उसके मुंह से किसी भय वशात भी, भागवत में आया पतित स्खलित भग्न संदर्श, कोई व्यक्ति गिरते हुए अंग भंग होते हुए पतित होते हुए कोई मच्छर आदि सर्प आदि के दंश करते हुए किसी मजबूरी वशात भी हरि नाम नारायण नाम उसके मुंह से निकल जाता है तो उसको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती, ऐसा भागवत में वर्णन आया, अजामिल के प्रसंग में ही आया है। तो यहां पर कहते हैं कि देखो शब्द के उच्चारण से ही उसको ये तो पता नहीं कि मेरे स्वर्ग का साधन है या मेरे मुक्ति का साधन है, वो तो भ्रम से ही लिया उसने नाम, लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग मिल गया, उसको मुक्ति मिल गई, अजामिल को मुक्ति की प्राप्ति हो रही है। अत्रापि नारायण नामनः पुत्र नामवत् नामत्व ज्ञानम भ्रांति रेव। अब यहां पर देखो नारायण नामनः नारायण के नाम की पुत्र नामत्व ज्ञानम भ्रांति रेव, वो नारायण का नाम है और उसी भ्रांति वो पुत्र के नाम से हुई, लेकिन शब्द नारायण का होने के कारण है उसको नारायण की ही प्राप्ति होती है। तो पुत्र तो नारायण नहीं है पर उसमें भ्रांति हुई, पर ऐसे भ्रांति से भी पुत्र के बहाने भी वो नाम जो है साक्षात नारायण की प्राप्ति करवा देता है। इसलिए है तो सारा का सारा द्वैत मात्र ये भ्रांति ही है, लेकिन संवादी भ्रांति होने के कारण इसका अर्थ हुआ कि जो हम साधन कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं ये भी क्या है, द्वैत परक ही तो है, और द्वैत है तो वो भी भ्रांति ही है, सचमुच अद्वैत ही सत्य है, परंतु ये जो द्वैत में भी साधन है वो भ्रांति होते हुए भी एक सत्य तत्व को जिसकी हमें आवश्यकता है वहां तक पहुंचा देने वाला होता है, ये बात यहां पर बता दी गई है। एवं त्रिविध संवादी ब्रह्म उदाहरण न सिद्धम अर्थम आह, इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र तीनों प्रकार की जो भ्रांतियां बताई गई हैं उसके उदाहरण के द्वारा क्या सिद्ध किया गया वो बता रहे हैं क्या सिद्ध हुआ। प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे उक्त न्यायेन संवादी भ्रमा संति ही कोटिशः, कहते हैं इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र के विषय में जो न्याय बताए गए हैं उसके अनुसार संवादी भ्रम के बहुत सारे उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं, आप देख ले देख सकते सैकड़ों क्या कोटि से संति करोड़ों उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं। विपक्षे बाधक प्रदर्शने न उक्तम अर्थम दृढ़यति। अब यहां पर 11वें श्लोक में कह रहे हैं कि देखो इस प्रकार के जो संवादी ब्रह्म हैं बहुत सारे उसके उदाहरण दिए गए हैं, अन्यथा मृतिका दारो शिला सूर देवता कथम अग्नित्वादि धियोपास्य कथम वा योषिदादय। संवादी ब्रह्म से ही अपने जो साध्य है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। संवादी ब्रह्म एक अच्छा ब्रह्म है यूं समझ लो, है तो ब्रह्म ही लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति करवाने वाला है। यदि संवादी ब्रह्म व्यक्ति के लिए आवश्यक न हो ग्राह्य न हो तो ऐसी स्थिति में देखो शास्त्र में जितने सारे उदाहरण दिए हैं वो सारे के सारे व्यर्थ हो जाते। कैसे व्यर्थ होते, बोले यदि ऐसा नहीं होता तो मृतिका दारु शिला देवता कथम शिव ब्रज गोपियां यमुना नदी में स्नान करती है और स्नान करने के बाद बाहर निकल के वहां की बालू मिट्टी से कात्यायनी देवी की मिट्टी से प्रतिमा बनाती है और प्रतिदिन प्रार्थना करती है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। उसको देखती है देवी को मृतिका पिंड मूर्ति जो बनाई गई और ब्रज गोपियां कहते हैं हे देवी उस मिट्टी मृत पिंड में देवी को देख रही है और प्रार्थना करती है कि नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरु वो जो नंद गोप कुमार कृष्ण है वो हमें पति के रूप में प्रदान करो पति के रूप में मिले प्रार्थना किससे हो रही है? देवी से। देवी कौन है? वो मिट्टी, वो तो मिट्टी है, वहां देवी कहां है? परंतु कहते ये संवादी भ्रम है, वो उस बालू का जो मई मिट्टी है उसी में देवी की भावना है, और सचमुच में उसकी उपासना का फल हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उनको प्राप्त हुए। यदि ऐसा नहीं होता, संवादी भ्रम साधक न होता, तो फिर किस प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति होती गोपियों को बताइए। मृतिका का उदाहरण दिया, और दारू लकड़ी। अब जगन्नाथ जाते हैं ना, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, जगन्नाथ के दर्शन करते हैं कि काष्ठ मूर्ति के दर्शन करते हैं? क्या है वहां? काष्ठ मूर्ति है। अब है तो काष्ठ मूर्ति, भ्रम ही तो है, वहां कृष्ण भगवान कहां है? लेकिन उस मूर्ति में उपासना करने से साक्षात भगवान के दर्शनों का आनंद मिलता है, इसलिए संवादी भ्रम होते हुए भी वो भ्रम भी उसको साध्य की प्राप्ति करवाने वाला ही है, नहीं तो यह भी सिद्ध नहीं होता। शिला जो पत्थर होता है, देखो पत्थर में शालिग्राम में महादेव की, क्या विष्णु की, और नर्मदेश्वर में महादेव की कथा सुन रहे थे पूर्व प्रवचन में, तो सारे उसी के द्वारा शिव की विष्णु की आदि जो प्राप्ति होती है। अब शिव विष्णु की प्राप्ति एक पत्थर के द्वारा हो रही है, विचार की दृष्टि से देखो तो भ्रम है। लोग कहेंगे कि यही भगवान है क्या है? तुम्हारा भगवान ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को खाने वाले चूहे को नहीं भगाता, तुम्हारा भय कैसे भगा देगा भाई है? अब उसको पत्थर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन साधक को वहां पर भगवान शिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो है तो वो शिला, लेकिन शिला से भी वो जो परमात्मा है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। संवादी भ्रम के उदाहरण है सब, तभी ये देवता होते हैं, नहीं तो देवता कथम शिव। यदि ऐसा नहीं होता, संवादी भ्रम से उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तो मृतिका देवता कैसे होती, लकड़ी काष्ठ देवता कैसे हो जाते, पत्थर देवता कैसे हो जाते? संवादी भ्रम से बहुत बड़ा लाभ है। और तो और कहते हैं सारे के सारे जड़ उदाहरण दे दिए आपने, मिट्टी का उदाहरण देखो, पत्थर का उदाहरण देखो, लकड़ी का उदाहरण देखो, ये सारे के सारे जड़ हैं। बोले जड़ को छोड़ो, चेतन का उदाहरण ले लो, चलते फिरते के अंदर भी ऐसा होता है। अग्नित्वादि धियो उपास्या कथम वा योषिदादय। अच्छा ये बताओ, छांदोग्य के पंचाग्नि विद्या में एक स्त्री में अग्नि की भावना की गई, तो स्त्री अग्नि होती है क्या? छूने से जल जाते हैं क्या? जलते तो नहीं है, लेकिन अग्नि की भावना करने से उनकी उपासना सिद्ध हो जाती है, पंचाग्नि विद्या में बताया गया। तो इस प्रकार से यदि तर्क करके देखने लगो तो वहां पर सचमुच में है तो भ्रम ही, स्त्री अग्नि कैसे हो सकती है? लेकिन उसमें भावना से और भावना करके गया तो वास्तव में अग्नि की उपासना सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं, ये बता रहे हैं कि संवादी भ्रम है तो भ्रम ही, लेकिन संवादी भ्रम होते हुए भी अपने साध्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। अब सारा वेदांत की दृष्टि से ऐसा देखने लग जाओ तो महाराज उपासना पद्धति समाप्त हो जाएगी, और उपासना पद्धति समाप्त हो गई तो चित्त स्थिरता का कोई साधन ही नहीं होगा, और चित्त स्थैर्य नहीं होगा तो फिर मोक्ष सिद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखो वैदिक हमारी उपासना बहुत विलक्षण है, और इन सारे प्रसंगों को जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया, परंपरा से वेद को नहीं समझा, उपनिषद को नहीं समझा, ये प्रक्रिया ग्रंथों को नहीं समझा, वो लोग स्वयं भ्रांत होते हुए हजारों लाखों लोगों को भ्रांतित कर देते हैं। आज अपने देश में सबसे बड़ा अनर्थ यही हो रहा है, परंपरा को, शास्त्र के इस अध्यात्म रहस्य को, उपासना के रहस्य को समझे बिना मनमाना मनगढ़ंत जो ज्ञान होता है, कितने संप्रदाय वाद चल गए, कितने मजहब चल गए, कितने अलग 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 शाखाएं पर शाखाएं निकल रही है, और जितने वो अपना अपना डफली और अपना अपना राग वाली बात हो गई। इसलिए कि इस वैदिक परंपरा से अनभिज्ञ लोग भी ये समझ लेते रहे हैं कि अहम सर्वज्ञोस्मि, मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन जब इस वैदिक परंपरा को समझेगा तब उसमें समझ में आएगी। भर्तृहरि ने एक बहुत अच्छी बात कही, प्रासंगिक बात मुझे याद आ गई। भर्तृहरि कहते हैं कि यथा किंचिज्ञो हम द्विपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोस्मि त्यभवदवलिप्तम् मम मनः। जब कहते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, यदा किंचिज्ञो हम कुछ थोड़ा जानता था, इधर शास्त्र के ये समझ लो कि ओने कोने को देखा समझा, जैसे कोई सिंह पूंछ पकड़ ले पूरे हाथी को न समझे, ऐसे समझ लो कि मैंने शास्त्र को थोड़ा थोड़ा जाना, यदा किंचिज्ञो हम तो उस थोड़े से ज्ञान का मुझे ऐसा नशा चढ़ा, यदा किंचिज्ञो हम द्विपैव मदान्धः समभवम्। जैसे कोई मदोमस्त हाथी होता है और उसको ऐसा नशा चढ़ता है कि इस वन में मेरे जैसा कोई बलवान, कोई वीर, कोई बहादुर नहीं है, मुझे भी ऐसा नशा चढ़ा कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, उस शास्त्र के थोड़े थोड़े ज्ञान का ऐसा नशा चढ़ा। यदा किंचिज्ञो हम द्विपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोस्मि इत्यभवदवलिप्तम् मम मनः। मैंने उस समय समझ लिया कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं क्या नहीं जानता, सब कुछ ज्ञाता मैं ही हूं। मेरा मन ऐसा उस अधूरे ज्ञान में लिप्त हो गया, मिथ्या अहंकार में लिप्त हो गया। परंतु यदा किंचित किंचित, यदा किंचित किंचित दवक आकाशात, क्या हो, बहुत सुंदर कहा है कि जब थोड़ा 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 महापुरुषों का हमने संग किया और संतों का समागम करने से थोड़ा भीतर में ज्ञान आया, तो मुझे ऐसा लगा कि तदा मूर्खोस्मीति ज्वरैव मदो में व्यपगत। जब सचमुच में मैंने शास्त्रों को संतों का सानिध्य लेकर के और ठीक से समझार थोड़ा थोड़ा ज्ञान मेरे भीतर में आया, तो तब जाकर के समझ में आई कि मूर्खोस्मी, अरे मैं तो अव्वल दर्जे का मूर्ख हूं, अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मान करके रखा था। तब वो जो मिथ्या ज्ञान का, अधूरे ज्ञान का, तुच्छ ज्ञान का एक नशा चढ़ा हुआ था, वो नशा मेरा ऐसा उतर गया जैसे कोई किसी को ज्वर चढ़ा हुआ हो और डॉक्टर साहब एक टेबलेट दे दें और देखते देखते वो ज्वर नीचे उतर जाए, ऐसे उस ज्ञान की टेबलेट मुझे मिली। और जब भीतर में उतरने लगा ज्ञान थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे जैसे बुखार उतर जाती है, मेरे अधूरे ज्ञान का झूठा जो नशा था वो नशा उतर गया। बहुत होता है, अब देखो कैसी सुंदर पद्धति है। हां, वेदांत की दृष्टि से देखने पर सब कुछ भ्रम ही है। जब अद्वैत ही सत्य है तब द्वैत मात्र तो सारा का सारा मिथ्या ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो कुछ व्यवहार है सारा भ्रांति मूलक ही है। लेकिन कुछ ऐसी भ्रांति है बाबा, जो भ्रांति होते हुए भी कल्याण का साधन बन जाती है, उसको संवादी भ्रम बोल दिया गया, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। इदानीं बहुभिर ग्रंथे उपपादितम संवादी भ्रमम बुद्धि सौकर्याय संक्षिप्य दर्शयति। अब तक जो ये संवादी भ्रम का वर्णन किया है उसको बुद्धि में ठीक से बैठ जाए, उसके लिए एक संक्षेप में उसका यहां वर्णन कर रहे हैं। जो कितने सारे ग्रंथों में जिसका विस्तार किया गया है उसका एक सारभूत श्लोक आ रहा है सामने। अयथा वस्तु विज्ञानात् फल लभ्येत ईप्सितम् काकतालीयत सोयम् संवादी भ्रम उच्यते। ये संवादी भ्रम की वास्तविक व्याख्या है। अब तक तो सारे एक दृष्टांत या उदाहरण दिए गए हैं, संवादी भ्रम की परिभाषा क्या होगी तो उसके लिए इस बार में श्लोक को याद कर लेना चाहिए। यही है संवादी भ्रम की व्याख्या, ये संवादी भ्रम की परिभाषा समझ लो। अयथा वस्तु विज्ञानात् फल लभ्येत ईप्सितम् काकतालीयत स्वयं संवादी भ्रम उच्यते। वो ये संवादी भ्रम कहा जाता है जो अयथा वस्तु विज्ञानात, वस्तु जैसी है उसका वैसा ज्ञान नहीं है। अयथा वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा ज्ञान, परंतु है तो भ्रम ही। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा जानने से भी क्या होता है, ईप्सितम फलम लभ्यते, उसको अभिष्ट जो है फल की प्राप्ति हो जाती है। वो जैसा है वैसा तो नहीं जाना। अब जैसे शालिग्राम का उदाहरण आया आपके सामने, नर्मदेश्वर का उदाहरण आया, तो क्या शालिग्राम ही विष्णु है, नर्मदेश्वर वो पत्थर है, वही शिव है, ऐसा तो नहीं है। अयथावत, वो जैसा है वैसा थोड़ी जान लिया। क्या शिवजी ऐसे ही है, क्या शिवजी परिच्छिन्न है, क्या विष्णु जी परिच्छिन्न है? क्योंकि जिस पाषाण खंड में शिव विष्णु आदि की उपासना की जा रही है वो एक खंड है, एक परिच्छिन्न वस्तु है, और परिच्छिन्न में कहते हैं कि ये शिव जी है, ये विष्णु जी है। अरे विष्णु शब्द का अर्थ ही व्यापक होता है, तो वो जो शालिग्राम का पत्थर वो व्यापक कहां है, वो तो परिच्छिन्न है। यथावत हुआ, जैसा लक्षण है वैसा तो है ही नहीं वहां पर, पत्थर है वो। भगवान विष्णु चेतन तत्व है, और जिस पाषाण में हम भावना कर रहे हैं वो जड़ वस्तु है, वो व्यापक है, ये पत्थर परिच्छिन्न है, वो चेतन है, ये पत्थर जड़ है, वो सर्वज्ञ है, इस पत्थर को ये भी ज्ञान नहीं कि मैं पत्थर हूं। अयथावत है कि नहीं? पर ऐसी उपासना करने पर भी, ऐसा जानने पर भी लाभ क्या है? अयथा वस्तु विज्ञानात, वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसे जानने से भी, बल्कि इप्सितम फलम लभ्यते, परंतु फिर भी ईप्सित फल की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? अब जैसे विष्णु है वैसा शालिग्राम की मूर्ति नहीं है, और जैसे शिव है वैसे पिंड नहीं है, परंतु फिर भी उस पिंड में विष्णु की भावना करने से और एक पिंड में शिव की भावना करने से शिव तत्व की प्राप्ति होती है, विष्णु तत्व की उधर प्राप्ति होती है। तो वो जैसा नहीं वैसा करने पर भी उसका जो अभिष्ट था, ईप्सित का अर्थ होता है कर्तु ईप्सिततम, जो कर्ता की इच्छा विशेष होती है कि मुझे इससे ये चीज मिले, ईप्सित का अर्थ है इष्ट, जिसकी हम इच्छा करते हैं। तो वो जो पत्थर है उसकी तो इच्छा नहीं करते हैं, उसकी पूजा करके गोपियों ने, कुमारियों ने जो बालू मिट्टी में उपासना की है, वो बालू मिट्टी को पाने के लिए उपासना थोड़ी की है। बताइए, उपासना तो बालू मिट्टी में कर रही थी, और प्रार्थना क्या कर रही थी? नंद गोप सुतम पति मे कुरु, जो सबका पालनहार पति है, सर्जनहार पति है, सबका आधार है। पति का मतलब ही बहुत विलक्षण है वहां है। पति मिले तो क्या शादी की थी उन्होंने? कोर्ट में जाकर के किया, सात फेरे खाए, पाणिग्रहण हुआ, तो किसको चाहती है? पति चाहिए। दो पति होता है, एक जिसके साथ में जीवन संबंध करते हैं, और एक पति होता है जो सबका संरक्षक होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति होता है वो पूरे देश का पति है ना, तो क्या पूरा देश उसकी पत्नी है? हाँ। तो राष्ट्रपति का अर्थ है पूरे राष्ट्र का पालन करने वाला, रक्षण करने वाला, पोषण करने वाला, इसलिए पादनात पति कहा जाता है, पोषण करने से पति कहा जाता है। ब्रज कुमारियां बोलती हैं कि मुझे कृष्ण मिले, और उपासना कर रहे हैं बालू का मिट्टी से, और कामना है कृष्ण को पाने की। तो ईप्सित का अर्थ हुआ कि उनकी इच्छा नहीं है कि वो देवी को चाहे, वो देवी के माध्यम से कृष्ण को चाहती है। उनकी इच्छा नहीं कि वो बालू मिट्टी को पकड़ करके रखें, रोज का उनका नियम है कि वो पूजा करती हैं, और पूजा करके प्रार्थना करती हैं, प्रार्थना करके फिर उस जल में, यमुना जल में उनका विसर्जन कर देती है। तो क्या भगवान कृष्ण का विसर्जन कर रही है? नहीं, वो जो प्रतीक है बालू मिट्टी की प्रतिमा, उसका विसर्जन कर रही है, पर उसके द्वारा जो अभिष्ट था, ईप्सित था, वो भगवान कृष्ण है, आखिर उस कृष्ण को प्राप्त कर लेती है। यही तो होता है, इसलिए यहां पर यह कह रहे हैं कि ऐता वस्तु विज्ञानात, जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा ज्ञान करने पर से भी ईप्सित फल की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? बोले कोई हो ही जावे वो तो जरूरी नहीं है, संवादी ब्रह्म हो तभी होता है, यदि विसंवादी ब्रह्म हो तो न भी हो। पर संवादी ब्रह्म में किस लिए हो जाता है? कागतालीयत स्वयं, कागतालीयत, वो कागतालीयत न्याय है, कागताली का न्याय क्या है? बोले ताड़ का वृक्ष था, ताड़ के वृक्ष पर ताड़ के फल पके हुए हैं, योगायोग कोई कौवा आकर के उस पर बैठा, उधर कौवे का बैठना हुआ और फल का नीचे गिरना हुआ, तो कौवे ने तो फल नहीं गिराया, कौवे का फल गिराना उद्देश्य नहीं था, पर योग मिला कि एक माध्यम बन गया, कौवा वहां पर फल गिराने के लिए नहीं आया, कौवा तो अपना आश्रय लेने के लिए आया, बैठने के लिए आया, पर उसका बैठना हुआ इससे फल नीचे गिर गया। अब नीचे वाला व्यक्ति का उद्देश्य क्या? कौवे को बिठाना था कि फल को प्राप्त करना था? अरे कौवा कहीं उड़े कहीं बैठे, उसको क्या लेना देना, नीचे वाला व्यक्ति तो देख रहा कि फल पका हुआ, हमको फल चाहिए। और फल मिलने के बाद कौवा उड़ करके कौन से पेड़ पर गया, वो कौन सा ध्यान रखेगा है? तो ये जो माध्यम होता है उस माध्यम से अपने अभिष्ट को इष्ट को प्राप्त कर लिया जाता है, योग से ऐसा हो जाता है, इसलिए कागतालीय न्यायी है ये संवादी ब्रह्म में जिसको माध्यम बना करके जिस तत्व को पाना होता है उसकी प्राप्ति, अभिष्ट की प्राप्ति कर ली जाती है। इस प्रकार का जो भ्रम होता है वो संवादी भ्रम होता है। मूर्ति में पूजा करना भी भ्रम है, बालों मिट्टी में भगवान के लिए देवी की पूजा करना भी भ्रम है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से तो कोई संभव ही नहीं है, पर ये ऐसा भ्रम है जो अपने अभिष्ट को कृष्ण को प्राप्त करवा देती है, परमात्मा को प्राप्त करवा देती है, ताड़ के फल पर पेड़ पर लगे हुए फल की प्राप्ति करवा देती है कागतालीय न्याय से। जैसे इसी प्रकार से संवादी भ्रम में भी अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। ननो ब्रह्मोपासना क्या है भाई? ननो ब्रह्मोपासनस्य अयथा वस्तु विषयस्य कथम सम्यक ज्ञान साध्यम मुक्ति फल प्रदत्वम इति आशंक्य संवादी ब्रह्मवदेव इति आह। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि ब्रह्मोपासनस्य अयथा वस्तु विषयस्य कथम सम्यक ज्ञानम साध्यम मुक्ति फल प्रदत्वम। अब कहते हैं देखो, ब्रह्मोपासना करने वाले का अयथा वस्तु विषयस्य कथम सम्यक ज्ञानम साध्यम, जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है, मन ब्रह्मेति वेजानात, अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, ऐसे कई सारी श्रुतियां आती है कि मन में ब्रह्म की भावना की जाती है, विपासना करो कि मन क्या है, ब्रह्म है, अन्न क्या है, बोले अन्न ब्रह्म है, जगत में भावना करो कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ है वो ब्रह्म है, तब ये जो उपासना है अयथा वस्तु विषयस्य, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो ब्रह्म कैसे होंगे, अयथा वस्तु विषय है तो कथम सम्यक ज्ञानम साध्यम, तब उसका जो साध्य सम्यक ज्ञान है इसके द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, और ज्ञान के बिना मुक्ति सिद्ध नहीं है, तो ज्ञान साध्य जो मुक्ति फल है वो मुक्ति फल को ब्रह्म उपासना अयथा वस्तु में की जाने पर कैसे सिद्ध होगी। तब कहते हैं संवादी ब्रह्म वदेव इतिया है, हो जाएगी जैसे संवादी ब्रह्म में हुआ, प्रत्यक्ष संवादी ब्रह्म का उदाहरण, अनुमान संवादी ब्रह्म का उदाहरण, शास्त्रीय संवादी ब्रह्म के कितने सारे उदाहरण दिए, उसी प्रकार से कहते हैं ब्रह्म की जो उपासना है अयथा वस्तु में करने पर भी सम्यक ज्ञान होकर के मुक्ति फल को प्रदान करने वाली होती है। स्वयं ब्रह्मोपि संवादी यथा सम्यक फलप्रद, ब्रह्म तत्व उपासना भी तथा मुक्ति फलप्रदा। संवादी स्वयं ब्रह्मोपि यथा सम्यक फलप्रद, जो संवादी ब्रह्म होता है वस्तुतः है तो स्वयं भ्रम ही, भ्रम तो भ्रम ही होगा, लेकिन स्वयं भ्रम रूप होते हुए भी जिस प्रकार से सम्यक फल प्रद, वह सम्यक फल की प्राप्ति करवा देता है। अब नारायण जो शब्द था संवादी भ्रम था, लेकिन नारायण की प्राप्ति करवा दी। इसी प्रकार से संवादी जो है भ्रम होते हुए भी सम्यक फल को प्रदान करता, जिस प्रकार से उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व उपासना भी तथा मुक्ति फल प्रदान। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? लोग कहते हैं खाली कलयुग में नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले खाली नाम नाम से क्या होने वाला है? अरे नाम से ऐसे होने वाला, वो भी संवादी ब्रह्म है, संवादी ब्रह्म है। इसलिए उन साधना से ब्रह्म तत्व उपासना भी, ब्रह्म तत्व की जो उपासना की जा रही है कहां पर है? मन में उपासना कर रही है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म तत्व की उपासना की गई अन्न में, अन्न क्या है? अन्न ब्रह्म है, ऐसी उपासना करो। जगत क्या है? बोले यह ब्रह्म है, ऐसी भावना करो, ऐसी उपासना करो। तो क्या मन ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, जगत ही ब्रह्म है? ये तो सब नाशवान चीज है, जायमान है, अंत वाली है, परिच्छिन्न है, नाशवान है, ये ब्रह्म कैसे होगी? बोले ठीक है, ब्रह्म है ये, पर ब्रह्म होते हुए भी ऐसी उपासना करना शुरू कर दो। क्योंकि ये संवादी ब्रह्म है, इसलिए संवादी ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म तत्व उपासना मुक्ति फल प्रदा। जिस प्रकार से संवादी ब्रह्म होते हुए भी सम्यक फल को प्रदान कर देता है, ऐसे ब्रह्म तत्व की उपासना भी ये संवादी ब्रह्म रूपी ही है, परंतु आपको मुक्ति फल की प्राप्ति करा देने वाला होगा। अब ये सारा वेदांत सुनने चिंतन करने वाले को उपासना मपत से कोई विचलित नहीं कर सकता हो, क्योंकि कोई भी विचलित करने वाला व्यक्ति तर्क देकर के ही विचलित करता है। तो आपके पास ऐसा तर्क तैयार है तो कम से कम अपनी तो सुरक्षा कर लोगे, अपना कवच तो पहन लोगे, आपको तो गोली नहीं लगेगी। नहीं तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जो जैसा कहें। बहुत सारे लोग तो ऐसे भ्रमित होते हैं, कहते स्वामी जी फलाने स्वामी जी आए, उन्होंने कहा कि कृष्ण नाम का माला जपो, तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान कृष्ण सबके प्रिय हैं, भक्ति अच्छी लगती है। वो आया ना, एक महात्मा आए, वेदांति आ गए, उन्होंने कुछ बताया। एक महात्मा सुनाते रहे कि एक संत आए किसी घर में और एक भक्त को जाते जाते मंत्र दे गए, मंत्र दिया कि तुम ऐसा करो, एक मंत्र जपो, उपासना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या करें महाराज, मंत्र दे जाओ। बोले मंत्र दे रहा हूं, सो हम सो हम सो हम, मंत्र जपो। अब उसने मंत्र ले लिया, सो हम सो हम सो हम, वह मैं हूं वह मैं हूं वह मैं हूं। तो एक दूसरे महात्मा आए थोड़े दिनों के बाद, भक्त कोई साधना करते हो, बिल्कुल महाराज स्वामी जी आए मंत्र देकर के गए, सो हम सो हम सो। वो महात्मा बोले भाई मंत्र तो बहुत अच्छा है पर तुम भूल गए, महात्मा ने कुछ और भी बोला होगा। नहीं नहीं इतना ही दिया था, सो हम सो। अरे नहीं, तुम्हारे सुनने में फर्क रह गया, एक अक्षर छूट रहा है, दा और जोड़ो इसमें, क्या है? दासो हम दासो हम दासो हम, ऐसे बोलो है, मैं दास हूं मैं दास हूं। तो उसने सोचा हो सकता महात्मा सुधार कर रहे हैं, तो मैं आज से महाराज यही बोलूंगा, दासो हम दासो हम। वो भी महात्मा चले गए। थोड़े दिनों के बाद यात्रा से वही संत लौट करके वापस आए, बोले भक्त साधना चल रही है, मंत्र का अभ्यास करते हो? बोले कर रहा हूं गुरु जी, बराबर चल रहा है, और थोड़ी आपसे कोई भूल हो गई होगी या मेरे सुनने में हुई होगी, एक संत जी आए सुधार के गए, तो मैंने सुधार करके बोला। बोले क्या सुधारा तुमने? कहा आपने वो दा अक्षर छोड़ दिया था, या मैं सुना नहीं पता नहीं। वो महात्मा बोले इसमें दा लगा दो, दासो हम जपता हूं। महात्मा कहने लगे बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी कहीं न कहीं तुम्हारे सुनने में या महात्मा के बताने में गलती हो गई, एक अक्षर छूट गया, इसलिए उसको मैं सुधार देता हूं। मेरी गलती को उन्होंने सुधारा तो उनकी गलती को मैं सुधार देता हूं। बोले सुनाओ महाराज क्या है। बोले वो जो दासो हम है उसके पहले एक अक्षर और जोड़ दो, स और लगा दो, दास से पहले स लगाए तो क्या बनेगा, स दा। दासो हम में स उधर लगा दिया, सदा सो हम, सदा सो हम, सदा सो हम। बोले हां महाराज ये बात ठीक है, सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सोहम। वो महात्मा सुधार करके चले गए, वो दूसरे जी फिर आए, बोले जब चल रहा है, बोले महाराज चल रहा है, लेकिन पहले वाले गुरु जी आए और उन्होंने मंत्र सुधार दिया। बोले क्या सुधार दिया, आपने उनके मंत्र की गलती निकाली, वो आपके मंत्र की गलती को सुधार गए। बोले आपने दासो हमें तो बताया था ने, बोले हां नहीं नहीं उन्होंने कहा एक अक्षर छूट रहा है, स छूट गया, सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सोहम। अरे बोले वो भी ठीक बताया, पर एक अक्षर और छूट गया, इसके पहले और दा लगा दो तो क्या हुआ। बोले दास दासो हम, दास दासो हम, दास दासो हम, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं महाराज, दास दासो हम, भगवान शिव हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, दास हैं, और हम तो उस दास के भी दास हैं, दास दासो हम, दास दासो हम। आप बताओ निश्चय कैसे करेगा, साधक की क्या दशा होगी, वो तो और उलझ जाएगा। एक महात्मा कहते थे कि भाई जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ज्यादा विचारशील पुरुष होते हैं, एक जाल होता है चटांक भर सूत का जाल, तो जो संसार का जाल है वो संसार जाल से बाहर निकलने का अर्थ है कि चटांक भर सूत के जाल को काट करके आप बाहर निकल गए। पर अगर शास्त्र के जाल में फंस गए तो नौमन सूत के जाल में फंस गए समझो, नौमन सूत के जाल में फंस गए, निकलना बहुत मुश्किल है, उहाप हो उहाप हो। ये तर्क इसलिए दिए जाते हैं, इसलिए तर्क दे दे करके दृढ़ करवाया जाता है कि ऐसे जाल से आप निकल सको। अब आप कहो कि फिर पढ़ना छोड़ो महाराज, एक बात पकड़ करके बैठ जाएं, अरे एक पकड़ के बैठ जाएंगे तो दासो हम सही है कि दास दासो हम सही है कि स्वम सही है, ये निर्णय कैसे करोगे भाई। तो उसके लिए भी जरूरी है, ये तो प्रेमपुरी जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि वो बंबई में पधारे, पर आज ये ज्ञान गंगा यहां पर बह रही है। तो चलो सदा समय तो नहीं, टाइम तो हो गया है, तो यहां पर यही कहते हैं ब्रह्म तत्व उपासना अपी तथा मुक्ति फलप्रदा। जैसे संवादी जो है वो ब्रह्म होते हुए भी सम्यक वस्तु की प्राप्ति करवाने वाला ही होता है, ब्रह्म है लेकिन सम्यक फल की प्राप्ति करवाता है, ऐसे ब्रह्म तत्व की जो उपासना है ये उपासना वस्तुतः तो ब्रह्मवत ही है, भावना रूप से ही होती है, लेकिन ये भावना ऐसी होती है कि मुक्ति फलप्रदा, मुक्ति रूपी फल को प्रदान कर देने वाली होती है। अब अगला जो प्रसंग है उसको कल देखेंगे अपने आप। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।